हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आंशी ने विधिक को उस आदमी को मारने का काम दिया था जो इंडिया में ये सब बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा था। अमन और आंशी अपने घर पर थे और वो न्यूज चैनल में न्यूज देख रही थे। फेमस पॉलिटिशियन शिवम चतुर्वेदी के मरने की खबर आ रही थी, जिससे अमन और आंशी समझ गए थे कि विधिक ने अपना काम कर दिया है। न्यूज देखने के बाद अमन के चेहरे पर गहरे हैरानी के भाव थे, तो वही आंशी के चेहरे पर घबराहट की। आंशी ने अमन की तरफ देखकर धीरे से कहा, विधिक ने अपना काम कर दिया है तो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तुम लोगों को जल्द से जल्द मेरी ट्रेनिंग करवानी होगी। इतने कम टाइम में सब कैसे होगा, मुझे तो डर लग रहा है। आंशी ने महसूस किया कि अमन ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो एक टक टीवी स्क्रीन को देखे जा रहा था। अमन का ध्यान कहीं और देखकर आंशी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर सिर हिलाकर कहा, इतनी हैरान क्यों हो रहे हो? कहीं ये पॉलिटिशियन तुम्हारा फेवरेट तो नहीं है? कुछ ऐसा ही समझ लो, हम सब लोगों को शिवम चतुर्वेदी में देश का एक नया भविष्य नजर आता था। यकीन नहीं हो रहा इस इंसान का असली चेहरा ऐसा हो सकता है। अच्छा हुआ पहले ही मर गया, वरना इस जैसे लोग देश को खोखला करते हैं। सबके सामने ऐसे जाहिर करते हैं जैसे इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं, जो सबका भला चाहते हैं, जबकि अंदर का सच कुछ और ही होता है। अमन को इस वक्त शिवम चतुर्वेदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अमन का गुस्सा जायज था, क्योंकि शिवम चतुर्वेदी की इमेज ही कुछ ऐसी थी। सब लोग उसे पसंद करते थे और अगला पीएम उसी ही बनाना चाहते थे, जबकि शिवम चतुर्वेदी अपनी जीत पक्की करना चाहता था। इसलिए उसने विधिक का सहारा दिया और अटैक करवाने शुरू कर दिए। वो ऑपोजिट पार्टी की इमेज भी इसके जरिए खराब करना चाहते थे। अमन आंशी से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पास मिस्टर दत्त का कॉल आया। आंशी को वहीं पर छोड़कर अमन उनसे बात करने के लिए एक तरफ आ गया। अमन के कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से मिस्टर दत्त की आवाज़ आई, सुना तुमने? विधिक राणा को इस देश को बर्बाद करने का काम शिवम चतुर्वेदी ने दिया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस जैसे शख्स को अपना आइडल मानता था। गुस्सा आ रहा है मुझे, और कहीं न कहीं अब विधिक को थैंक यू बोलने का दिल कर रहा है। वो जैसा भी हो, लेकिन उसने देश के सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया है। इसके लिए आपको विधिक को नहीं, आंशी को थैंक्स बोलना चाहिए। ये सब उसी की वजह से हुआ है। रही बात विधिक की, तो वो ये काम करने के लिए तैयार था। वो तो आंशी बीच में आ गई तो विधिक को पीछे हटना पड़ा, वरना हम भी अच्छे से जानते हैं विधिक राणा जैसा शख्स अपने कदम पीछे लेने वालों में से नहीं है। अमन ने सख्त लहजे में जवाब दिया। मिस्टर दत्त ने उसकी बात पर हामी भरी। अमन जो भी कह रहा था वो सच था। विधिक तो वो काम करना शुरू भी कर चुका था। अगर आंशी बीच में नहीं आती तो अब तक वो आधे शहर को जला डालता। आंशी का जिक्र आते ही मिस्टर दत्त बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारी आंशी बहुत ब्रेव है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, जो हुआ अच्छा हुआ। शिवम चतुर्वेदी मर गया, यही काफी है। वैसे मानना पड़ेगा काफी सफाई से काम किया है उसने। किसी को उसके मौत की इन्वेस्टिगेशन करने का मौका न मिले, इसलिए उसने उसके खिलाफ सारे सबूत पहले ही वायरल कर दिए। सबको यही लग रहा है कि उसी के किसी दुश्मन ने उसे मार दिया होगा। इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं जितने अच्छे से होनी चाहिए। अमन ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, इन्वेस्टिगेशन की चिंता आप मत कीजिए सर, हमारी सीबीआई तक पहचान है, हम वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कई बार अच्छे काम करने के लिए इलीगल तरीका भी अपनाना पड़ता है, तो हम देख लेंगे। सही कहा, चलो इन सबको छोड़ो, विधिक ने अपना काम कर दिया है तो अब वो आंशी को लेने जरूर आएगा। तुम उसे लेकर एजेंसी ऑफिस पहुँचो, हमें उसे मेंटली स्ट्रांग करने की ट्रेनिंग देनी होगी। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो उसे थोड़ी बहुत चीजें समझा देंगे, मिस्टर दत्त ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। अमन वापस लिविंग रूम में आ गया था। शिवम चतुर्वेदी की मौत का सुनकर उनका ध्यान ट्रेनिंग से हट गया था। उन्हें लगा कि विधिक को काम देने वाला इंसान कोई छोटा मोटा पॉलिटिशियन होगा, लेकिन वो एक बड़ा नाम निकला, इस वजह से उन्हें झटका लगा। अमन ने फिर से खुद को तैयार किया और आंशी के पास आकर कहा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करके एजेंसी ऑफिस पहुँचना है। विधिक ने अपना काम खत्म कर दिया है तो मुझे लगता है कि वो जल्दी आएगा। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर डाइनिंग टेबल पर आ गई। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जहां दोनों की रात और सुबह की शुरुआत अच्छी थी, वही अब अमन और आंशी दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। दोनों को एक ही बात परेशान कर रही थी और वो थी आंशी का विधिक के पास जाना। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद अमन आंशी के पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, ये करना जरूरी है क्या? हम देख लेंगे ना, तुम क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रही हो? पहली बार अमन को आंशी के लिए डर लग रहा था। आंशी ने मुस्कुराते हुए अमन के चेहरे को देखा और फिर कहा, तुम तो इतने शांत रहते हो, फिर अब तुम्हें डर क्यों लग रहा है? देखो, मैं सब कर लूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने ही रहूंगी। तुम जानते हो विधिक का घर कहाँ पर है? मुझे पता है तुम मुझसे मिलने आते रहोगे। मैं लवी को अब वहाँ नहीं भेज सकता, बट डोंट वरी, उसके होटल में काम करने के लिए हम हमारे स्टाफ मेंबर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सब तुम्हारे आसपास रहेंगे। तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत महसूस हो तो तुम हमें बुला सकती हो, हम तुरंत तुम्हें विधिक के यहाँ से हटा लेंगे। अमन की बात पर हामी भरी। उसके बाद वो दोनों एजेंसी ऑफिस के लिए निकल गए थे। एजेंसी में अमन की टीम से जुड़े सभी लोगों को पता था कि आज ट्रेनिंग होने वाली है, तो वो पहले से ही तैयार थे। दिव्याना की मौत होने की वजह से लावण्या ने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी और वो अपने मॉम डैड के साथ दिल्ली में थी। दिव्याना की लाश उन्होंने अभी तक उनके घर पर नहीं भिजवाई थी, फिर भी उन्हें संभालने के लिए लावण्या पहले ही चली गई थी। वहीं जस, मिस्टर गुप्ता और मिस्टर जिंदल आंशी और अमन के आने का इंतजार कर रहे थे। आंशी अमन के साथ एजेंसी ऑफिस पहुंच गई थी। वहां आते ही उनकी मीटिंग हो रही थी, जहां शिवम चतुर्वेदी की चर्चा हुई। शिवम चतुर्वेदी का नाम सुनकर सबको हैरानी हो रही थी, पर साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि वो अब मर चुका था। पूरे डिस्कशन के बाद मिस्टर दत्त ने कहा, आंशी तुम ऐसा करो कि जस के साथ स्पेशल सेल में पहुंचो, अमन बस कुछ देर में तुम्हारे पीछे आता ही होगा। अमन, लेकिन वो क्यों मेरे साथ आ रहा है? मुझे अमन से ट्रेनिंग नहीं लेनी है, आंशी ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। अभी भी वो अमन के सामने पूरी तरह कम्फर्टेबल होकर विधिक की बात नहीं कर पाती थी, इस वजह से उसने ऐसा कहा था। तुम्हें नहीं पता अंश, ब्रो यहाँ सबसे काम रहते हैं, इसी वजह से मेंटल ट्रेनिंग उनसे बेहतर तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। वो तुम्हें हर चीज अच्छे तरीके से समझा देंगे, जस ने जवाब दिया। मिस्टर जिंदल आंशी को गौर से देख रहे थे। आंशी वहाँ से जाती उससे पहले मिस्टर जिंदल तेज आवाज में बोले, अभी भी टाइम है, जिद मत करो, तुमने उसे हाँ कह दी होगी, लेकिन हम संभाल लेंगे। आंशी को हर कोई अपनी तरफ समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो विधिक के पास ना जाए। आंशी ने मिस्टर जिंदल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जस के साथ वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अमन ने मिस्टर जिंदल से कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा कि आपसे तमीज से पेश आए, अभी भी थोड़ा बचपना है उसमें।
हाँ, इतने सालों की नाराजगी है, इतनी आसानी से थोड़ी ना जाएगी, मिस्टर जिंदल में गहरी सांस भरते हुए कहा। आंशी भले ही उनसे दूर रही हो, लेकिन वो आंशी के लिए परेशान थे। वो आंशी को विधिक के पास भेजने के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे, पर आंशी की जिद के आगे उनकी चल नहीं रही थी। उनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद अमन आंशी के पास पहुंचा। उस सेल में कदम रखते ही अमन बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया था। वो सधे हुए लहजे में चल रहा था और आंशी के सामने आकर बैठ गया। जस भी वहीं पर आंशी के पास बैठा था। अमन को देखते ही आंशी ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। पहले उसे अमन को देखकर इतनी झिझक नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उनका रिश्ता अलग मुकाम पर पहुंच चुका था, जिसके बाद आंशी अमन से आई कांटेक्ट नहीं कर पाती थी। अमन आंशी की हालत समझ सकता था। उसने कुछ भी कहने से पहले जस की तरफ देखा और उससे कहा, तुम कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। सीधे सीधे कहिए ना ब्रो कि मैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। कम ऑन ब्रो, हमारा रिश्ता तो काफी फ्रेंडली है, आप मेरे सामने इसे समझा सकते हो। मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो, यही ना कि यहाँ आप इसके मेंटोर हो ना कि हस्बैंड, तो ये आपके सामने शाई फील ना करे। अमन जो कहना चाहता था जस ने वो अपने मुँह से कह दिया। अमन और आंशी हैरानी से जस की तरफ देख रहे थे। उनकी नज़रों को समझते हुए जस बोला, मुझे ऐसे मत देखिए, कोई भी समझ सकता है कि ये आपके लिए क्या फील करती है। आपको देखकर ब्लश कर रही है, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, आपको देखते ही नज़रें नीचे कर लीं। मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, हाँ सिंगल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कभी किसी लड़की को डेट ही नहीं किया। डोंट वरी अंश, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ब्रो से। चलो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। जस वहीं पर बैठा रहा और अमन जो कहना चाहता था वो उसने कह दिया था। आंशी ने अमन की तरफ देखा तो उसने हाँ में पलके झपकाईं। आंशी खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। ट्रेनिंग की शुरुआत करते हुए अमन आंशी से बोला, ओके, तो ये बात अपने माइंड में हमेशा याद रखना कि विधिक राणा किसी मुसीबत से कम नहीं है और हमसे बेहतर ये तुम समझती हो। वो तुमसे प्यार भले ही करता है, पर कोशिश करना कि गलती से भी उसे गुस्सा ना दिलाओ। हाँ, मैं जानती हूँ वो गुस्से में थोड़ा पागल हो जाता है, पर मैं उसे गुस्सा क्यों दिलाऊंगी, आंशी ने कंधे उचका कर कहा। जस ने आंशी की तरफ देखकर कहा, तुम तो नहीं दिलाओगी, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें उसे गुस्सा दिला सकती हैं अंश, जैसे कि किसी बात के लिए इनकार करना। ये मेल ईगो में शामिल होता है। लड़के जल्दी से ना सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, पर विधिक राणा का नेचर थोड़ा एग्रेसिव है, तो उसे ना सुनना पसंद नहीं होगा, जस आंशी को समझा रहा था। आंशी को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि ये कूल और बेपरवाह सा दिखने वाला लड़का जो हमेशा अपने में ही मस्त रहता है, वो इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि आज अमन के साथ ट्रेनिंग देने के लिए वो उसके पास बैठा था। जस भी काफी प्रोफेशनली और शांत तरीके से बात कर रहा था। आंशी ने जस की बात पर हामी भरी और कहा, ठीक है, फिर मैं विधिक को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी तो उसे गुस्सा ही नहीं आएगा और फिर उसे मुझ पर शक भी नहीं होगा। आंशी ने अपनी तरफ से काफी लापरवाही से जवाब दिया था, लेकिन उसका जवाब सुनकर अमन तिरछी निगाहों से आंशी की तरफ देख रहा था। आंशी ने अमन की तरफ देखा तो वो थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा था। आंशी को उसके गुस्से का कारण समझ नहीं आया। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले जस ने कहा, नहीं अंश, ऐसे हर चीज के लिए भी हाँ नहीं करनी। तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके पास जा रही हो, कोई उसकी मैनेजर या सेक्रेटरी बनकर नहीं। तुम उसके साथ जाओगी तो वो तुमसे शादी करना चाहेगा या शादी में यकीन नहीं करता तो बाकी सब चीजों का कह सकता है। कल को वो तुम्हें अपने साथ अपने बेड पर लेकर जाएगा और इंटीमेट होने को कहेगा, तो क्या तब भी तुम मना नहीं करोगी? जस के समझाने पर आंशी समझ गई थी कि अमन थोड़ी देर पहले उसे गुस्से से क्यों देख रहा था। आंशी असमंजस की स्थिति में थी। उसे विधिक को खुद से दूर भी करना था और उसे गुस्सा भी नहीं दिलाना था। जस जो कह रहा था वो सही था। ऐसे में सिचुएशन उसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। आंशी को एहसास हुआ उसने हाँ तो कह दिया था, पर मामला उतना भी सीधा नहीं जितना उसने सोचा था।